पृष्ठ संख्या 82, लेकिन वह 5 शेर के लगभग होता था। हर काम के लिए उनका समय नियत था। जिस फल का मौसम होता उसे जी भर के खाते थे। चूंकि बहुत से अमीर लोग उनके शिष्य थे, इसलिए उन्हें जीवन में कभी खाने पीने की तकलीफ नहीं हुई। नवाब आगा मीर, जिनकी ड्योढ़ी लखनऊ में अब भी प्रसिद्ध है, उनका बहुत आदर करते थे। कहा जाता है कि गाजीउद्दीन हैदर ने उनको कविराय की पदवी देनी चाही, तो उन्होंने यह कहकर उसे स्वीकार नहीं किया कि इतने छोटे से बादशाह की दी हुई पदवी लेकर क्या करूँगा। नासिक का यश दूर दूर फैला और महाराजा चंदूलाल शांदा, जो निजाम में दक्कन के दीवान थे, 10-12 हजार रुपया भेजकर उन्हें हैदराबाद बुलाना चाहते थे, लेकिन ये इसके लिए तैयार न हुए और हैदराबाद नहीं गए। 1838 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। नासिक ने 3 काव्य संग्रह छोड़े हैं, जिनमें से 2 बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने एक मसनवी भी धार्मिक विषय पर लिखी, जिसका नाम सिराज नज्म है। कहा यह जाता है कि उन्होंने व्याकरण और काव्यशास्त्र के संबंध में भी छोटी छोटी पुस्तकें लिखी थीं, परंतु निश्चित रूप से उनका पता नहीं चलता। नासिक एक गजल लिखने वाले कवि थे, और उन्होंने जो शैली चलाई थी उसी के कारण उन्हें बहुत बड़े कवियों में गिना जाता है। गजल में जो भावुकता और हार्दिक वेदना का अंश होता है, वह नासिक के यहाँ बहुत कम है। वह भाषा के एक बहुत बड़े पंडित और काव्यशास्त्र के निपुण विद्वान माने जाते हैं। विचार क्षेत्र में वह बहुत से कवियों से पीछे हैं, किंतु इस भाषा के प्रयोग में उन्हें प्रथम स्थान दिया जाता है। उनकी कविता में बड़ी बनावट और अलंकारों का अधिक प्रयोग पाया जाता है, इसलिए उनकी गजलें बहुधा रूखी फीकी और नीरस होती हैं। अगर कविता केवल शब्दों के शुद्ध प्रयोग का नाम होता तो नासिक से बड़े बहुत कम कवि निकलते, लेकिन भावनाओं की कमी और गंभीरता के ना होने से उनकी कविता हृदय पर कोई अस्थायी प्रभाव नहीं छोड़ती। इसका यह अर्थ नहीं है कि उनकी कविता अच्छे शेरों से एकदम खाली है, बल्कि सच यह है कि किसी प्रकार के स्पष्ट त्रुटि ना होते हुए भी उनकी कविता बेजान सी जान पड़ती है। भाषा के संबंध में उन्होंने जो कुछ किया उससे भाषा को लाभ भी हुआ और हानि भी। हानि यह हुई कि उसके विकास की दिशाएं सीमित हो गईं, और कवियों का पूरा ध्यान विचार के बदले शब्दों और अलंकारों पर केंद्रित हो गया। और लाभ यह हुआ कि भाषा के प्रयोग में एक प्रकार की समानता आ गई और एक ऐसा नियम प्रतिपादित हो गया जिससे विमुख होना काव्यशास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध ठहरा। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि नासिक एक कवि के रूप में असफल हैं, क्योंकि वह भावनाएं जो कविता को प्रभावशाली बनाती हैं, बुझी बुझी और दबी दबी सी हैं। इसके विरुद्ध भाषा, मुहावरे और अलंकार सारी कविता पर इस प्रकार छाए हैं कि वही उनकी रचनाओं का मूल अंग जान पड़ते हैं। उदाहरण के लिए ये शेर देखिए, पृष्ठ संख्या 83। आज होता है दिला दर्द जो मीठा मीठा, ध्यान आता है तुझे किसके लवे सिरी का। सैकड़ों आहें करूं पर जिक्र क्या आवाज का, तीर जो आवाज दे है नक तीरंदाज का। नाज नीनों से करूं क्या रब्त मैं नाजुक मिजाज, बोझ उठ सकता नहीं मुझसे किसी के नाज का। तुरफा गुल इस बाग में है और शबनम है अजीब, हंस के बैठा जो तेरी महफिल में वो रो कर उठा। बात जिन नाजुक मिजाजों से न उठती थी कभी, बोझ उनसे सैकड़ों मन खाक का क्यों कर उठा। रश्क से नाम नहीं लेते कि सुन ले ना कोई, दिल ही दिल में उसे हम याद किया करते हैं। वो नहीं भूलता जहाँ जाऊँ, हाय मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ। किसी का कब कोई रोजे सियाह में साथ देता है कि तारीकी में साया भी जुदा रहता है इंसान से। नासिक की भांति प्रसिद्ध और उतने ही महत्वपूर्ण लखनऊ के दूसरे कवि ख्वाजा हैदर अली थे, जिनका उपनाम आतिश था। उनका परिवार दिल्ली के सूफियों का परिवार था। आतिश के पिता दिल्ली से फैजाबाद चले आए थे और वहीं आतिश ने जन्म लिया। बालपन ही में पिता ने साथ छोड़ दिया और आतिश को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा। एक स्वच्छंद और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का अवसर मिला तो आतिश कुछ अधिक शिक्षा प्राप्त ना कर सके और फौजी छावनी के सिपाहियों और उनके लड़कों के साथ खेल कूद कर तलवार चलाना और निर्भीक जीवन व्यतीत करने का गुर सीख गए। उनके स्वभाव में एक प्रकार की स्वतंत्रता और बांकपन पैदा हो गया था। साथ ही कुछ तो सूफी घराने से संबंध रखने और कुछ स्वतंत्र जीवन बिताने के कारण एक प्रकार का संतोष और आत्म अभिमान पैदा हो गया था, जिसकी झलक उनकी शायरी में कदम कदम पर दिखाई देती है। फैजाबाद में एक नवाब के यहाँ तलवार चलाने वालों में नौकर हो गए थे और उन्हीं के साथ लखनऊ आ गए। उस समय का लखनऊ शेर शायरी का केंद्र था, इंशा और मुसफ़ी का बोलबाला था और हर जगह इन्हीं की चर्चा थी। आतिश भी मुसफ़ी के शिष्य हो गए, किंतु किसी बात पर उनसे अप्रसन्न होकर पृष्ठ संख्या 84 नाता तोड़ लिया। उनके अंदर स्वयं कविता के ऐसे तत्व थे कि थोड़े ही समय में वह लखनऊ के मुशायरों में चमक उठे और उनका नाम भी बड़े कवियों में लिया जाने लगा। बहुत से लोग उनके शिष्य हो गए, परंतु पर वह राज दरबार और अमीरों से अलग थलग एक संतुष्ट जीवन बिताते थे। कहा जाता है कि अवध के राज दरबार से उनको 80 रुपये महीना मिलता था, लेकिन वह उसे दीन और आश्रितों में बांट देते थे। आतिश का स्वभाव भी अत्यंत आकर्षण रखता था। उनकी आवश्यकताएं बहुत कम और इच्छाएं ना होने के बराबर थी। बड़े लोगों से कभी मिलते ना थे, दरिद्र और दीन भाइयों के साथ बैठकर प्रसन्न होते थे। एक लंबा गेरुआ वस्त्र पहनते, साथ में मोटा डंडा और कमर में तलवार लटकती रहती थी। भांग पीने का शौक था, कभी-कभी अपनी कविता में इसका उल्लेख किया है। लोगों ने नासिक से मनमुटाव पैदा करा दिया था, लेकिन उसने कभी कोई गंदा रूप धारण नहीं किया। 1846 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। आतिश की कविता एक प्रकार से लखनऊ के उस रंग से मिलती जुलती है जिसको नासिक ने प्रचलित किया था। इसका अर्थ यह है कि उनकी कविता भी अलंकारों से भरी हुई है और कभी-कभी तो ऐसा जान पड़ता है कि यह भी भाव शून्य होकर केवल शब्दों और अलंकारों के लिए शेर लिखते थे। लेकिन अगर ऐसी शायरी को अलग कर दिया जाए तो आतिश का दूसरा रंग, जिसमें भावनाओं और कल्पनाओं का जोर है, बोलचाल की शुद्ध भाषा में बड़े प्रवाह के साथ मुखर हो उठता है और भाषा की सुंदरता के साथ साथ करुणा की अपार धाराएं मन को आंदोलित कर देती हैं। आतिश के जीवन में जो स्वच्छंदता, निर्भीकता और सरलता थी, वही उनकी काव्य रचना में भी दीख पड़ती है। उन्होंने बहुत अधिक कविताएं नहीं लिखी, केवल उनके दो छोटे छोटे काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनमें गजलों के सिवा और कुछ नहीं है, लेकिन इन्हीं गजलों में वह तसव्वुफ के सूक्ष्म भाव और प्रेम के गहरे से गहरे विचार प्रकट करते हैं। उनके यहाँ नैतिक सिद्धांतों का उल्लेख बार बार आता है, जिनसे पता चलता है कि वह जीवन में संघर्ष और सुंदरता की खोज को मानव जीवन का कर्तव्य समझते थे। यद्यपि नासिक भाषा के बहुत बड़े पंडित थे, परंतु यह बात पूरे विश्वास से कही जा सकती है कि आतिश की भाषा उनसे अधिक मनोहर और रोचक ढंग से प्रस्तुत हुई है। आतिश का विचार था कि कविता एक कला है जिसमें शब्दों का सुंदर से सुंदर प्रयोग होना चाहिए। इसलिए उनके यहाँ कला के साथ भावनाएं इस प्रकार सम्मिलित हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए ये शेर देखिए, जमीने चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। पृष्ठ संख्या 85। न गोरे सिकंदर ना है कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। बहारे गुलिस्तां की हैं आदम आदम, खुशी फिरते हैं बागवां कैसे कैसे। बुतखाना खोद डालिए, मस्जिद को ढाइए, दिल को न तोड़िए, ये खुदा का मुकाम है। दिल की कुदरतें अगर इंसान से दूर हों, सारे निफाक गब्रो मुसलमान से दूर हों। ना मर्द और मर्द में इतना ही फर्क है, वो नान के लिए मरे ए नाम के लिए। मेरे सनम का किसी को मका नहीं मालूम, खुदा का नाम सुना है निशा नहीं मालूम। अखीर हो गए गफलत में दिन जवानी के, बहारे उम्र हुई कब खिजा नहीं मालूम। खुली है खाना ए शयाद में हमारी आँख, कफस को जानते हैं आशियाँ नहीं मालूम। हम क्या कहें किसी से, क्या है तरीक अपना, मजहब नहीं है कोई, मिल्लत नहीं है कोई। सर सम शां कटाइए पर दम न मारिए, मंजिल हजार सख्त हो हिम्मत न हारिए। नासिक और आतिशी काव्य रचना का गहरा अध्ययन किया जाए तो प्रकट होगा कि जहाँ तक लखनऊ की काव्यधारा का संबंध है, दोनों में कई प्रकार की समानताएं मिलती हैं, लेकिन उनके मूल तत्वों को देखा जाए तो उनमें बड़ा मतभेद है। उर्दू साहित्य के प्रत्येक इतिहास में उनकी तुलना की गई है, जिसके देखने से मालूम होता है कि एक की कविता बनावट और अलंकारों पर आधारित है और दूसरा भावनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि अच्छे शब्द और अलंकार के प्रयोग से उसकी कविताओं की सुंदरता और प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। आतिश सूफी मत के बहुत निकट थे। लखनऊ के कवियों ने तसव्वुफ को कोई स्थान नहीं दिया था, इसलिए आतिश की ध्वनि लखनऊ काव्य क्षेत्र में कुछ नई नई सी जान पड़ती है। उनके यहाँ संसार को ठुकरा देने, संघर्ष करके आगे बढ़ने और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की भावना प्रबल है कि वह केवल लखनऊ ही में नहीं समस्त उर्दू काव्य में पृष्ठ संख्या 86 अपना एक उच्च स्थान बना लेते हैं। इन दोनों महान कवियों के बहुत से शिष्य थे जिन्होंने उनकी चलाई हुई परंपराओं को प्रबल किया। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि इस समय तक नासिक की काव्य परंपरा से संबंध रखने वाले उसी प्रकार भाषा की शुद्धता पर जोर देते रहे हैं जैसा स्वयं नासिक ने किया, लेकिन इसके विपरीत आतिश के शिष्यों में कई ऐसे हुए जिन्होंने भाषा के साथ साथ विषय और विचारों पर भी जोर दिया। नासिक के शिष्यों में प्रसिद्ध नाम ये हैं: वजीर, वर्क, रश्क, वहन, मुनीर और महन इत्यादि। इसी प्रकार आतिश के शिष्यों में प्रमुख हैं रिंद, सबा, नसीम, खलील, शौक इत्यादि। फिर इन शिष्यों के शिष्य चलते रहे और यह क्रम इस समय तक जारी है। इनमें से हर एक का उल्लेख इस संक्षिप्त पुस्तक में नहीं किया जा सकता, परंतु दो चार के बारे में कुछ लिखना आवश्यक जान पड़ता है, क्योंकि इसी से लखनऊ काव्य परंपरा की पूरी स्थिति समझ में आ सकेगी। इससे यह बात भी स्पष्ट हो सकेगी कि इन दोनों श्रेष्ठ कवियों के शिष्यों ने जो काव्यधारा चलाई थी वह चलती तो रही, परंतु उसमें कुछ विशेष वृद्धि उस समय तक ना हो सकी, जब तक कि मीर, अनीस, मिर्जा, दबीर ने और अनेक प्रमुख कवियों ने मर्सिया की कला को जमीन से उठाकर आसमान पर नहीं पहुंचा दिया। नासिक के प्रसिद्ध शिष्य वजीर लखनऊ के रहने वाले थे और एक उच्च कुल से संबंध रखते थे। उन्होंने अपना समस्त जीवन संसार से विरक्त होकर अपने ढंग से बिता दिया। कहा जाता है कि वाजिद अली शाह ने दो दफा बुलाया, लेकिन वह टाल गए। नासिक के रंग में बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे, उनके भी बहुत से शिष्य थे और वह लोग भी उस शैली को प्रचलित करने में लगे हुए थे जिसे नासिक चलाना चाहते थे। उन्होंने अपना कोई काव्य संग्रह संकलित नहीं किया, लेकिन जब 1853 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई तो उनके शिष्यों ने उनकी गजलें एकत्र करके प्रकाशित करा दी और उसका नाम दफ्तरे फसाहत रखा। उनके कुछ शेर ए हैं: जब खफा होता है तो यूं दिल को समझाता हूँ मैं, आज है ना मेहरबां कल मेहरबां हो जाएगा। थाम लूँ दिल को जरा हाथों से, आप पहलू से ना उठ जाइएगा। जो कहता हूँ तेरा बीमार हूँ मैं, तो क्या कहता है कुछ अपनी दवा कर। नहीं उठने के कातिल की गली से, कि हम बैठे हैं सर से हाथ उठाकर। तिरछी नजरों से न देखो आशिक के दिलगीर को, कैसे तीरंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। पृष्ठ संख्या 87। रस्क भी नासिक के प्रमुख शिष्यों में थे। उन्होंने भाषा को शुद्ध करके शब्दकोश तैयार करने और अपने गुरु के बताए हुए सिद्धांतों का प्रचार करने में बड़ा नाम पैदा किया। उनके दो काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन वह बहुत रूखी फीकी कविताओं से भरे हुए हैं। रश्क केवल यह देखते थे कि उनके शब्द और मुहावरे ठीक हैं या नहीं। उन्हें इसकी चिंता ना थी कि कविताओं में कुछ मज़ा भी होना चाहिए। उनकी मृत्यु 1867 ईस्वी में हुई। रश्क ने भी बहुत से शिष्य छोड़े जिनमें मुनीर और जलाल प्रमुख हैं। आतिश के शिष्यों में नवाब सैयद मोहम्मद खां, रिंद और पंडित दयाशंकर नसीम बहुत बड़े कवियों में गिने जाते हैं। रिंद अवध के शाही परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने फैजाबाद में अपने बचपन और जवानी के दिन बड़े सुख चैन से बिताए। उसके बाद लखनऊ चले आए। यहाँ भी उनका जीवन राज दरबार से संबंधित होने के कारण विलासपूर्वक कटता रहा। आतिश को अपनी कविता दिखाते थे और अंत में उन्हीं की तरह सादा जीवन बसर करने लगे थे। उन्होंने 1857 ईस्वी में मृत्यु पाई। उनकी भाषा साफ सुथरी है और कविता में भावनाओं की कमी नहीं। उन्होंने दो काव्य संग्रह तैयार किए थे जो प्रकाशित हो चुके हैं। उनके कुछ शेर ये हैं। हजार बार किया मेरा इम्तिहान उसने, बस आजमा चुका अब आजमाएगा फिर क्या। मैं भला क्यों कर कहूँ तुमको बुरा, आपने जो कुछ किया अच्छा किया। वादे पे तुम न आए तो कुछ हम न मर गए, कहने को बात रह गई दिन तो गुजर गए। धूप दिन की ओस शव की खाइए, आस्ताने यार पर मर जाइए। पड़ गई जान किस अजाब में हाय, चाहना भी बड़ी मुसीबत है। न खुलवाओ मेरी जुबां चुप रहो, कोई बात मुंह से निकल जाएगी। पंडित दयाशंकर कौल, जिनका उपनाम नसीम था, एक अच्छे कश्मीरी परिवार से संबंध रखते थे। 1811 ईस्वी में पैदा हुए थे और बालपन से ही कविताएं लिखते थे। उर्दू के साथ साथ फारसी के भी विद्वान थे और अमजद अली बादशाह की सेना में बख्शी के पद पर नियुक्त थे। वह आतिश के प्रसिद्ध शिष्यों में गिने जाते हैं। उन्होंने गजलें भी लिखी, पर वास्तव में वह अपनी सुविख्यात और अमर मसनवी गुलजारे पृष्ठ संख्या 88 नसीम की वजह से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कुल 32 वर्ष की आयु पाई और 1843 ईस्वी में लखनऊ में ही परलोक सिधारे। कहा जाता है कि उन्होंने अलफ लैला की कुछ कहानियों का अनुवाद भी उर्दू में किया था। गुलजारे नसीम उर्दू के प्रसिद्ध मसनवी है जिसका नाम मीर हसन की मसनवी के बाद लिया जाता है। कहते हैं कि जब उन्होंने यह कविता लिखी तो बहुत लंबी थी। लिखकर जिस समय अपने काव्यगुरु आतिश को दिखाई तो उन्होंने उसे पढ़कर कहा, बेटा भला इतनी लंबी कविता कौन पढ़ेगा? या तो तुम पढ़ोगे कि तुमने लिखी है, या मैं पढ़ूंगा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। जाओ इसे संक्षिप्त कर डालो। इस आदेश के अनुसार नसीम ने उसे संक्षिप्त किया और आज वह उर्दू साहित्य कोश में अनमोल कृति की मान्यता प्राप्त कर चुकी है। इस मसनवी में गुल बकावली की प्रसिद्ध कहानी लिखी गई है। गद्य में यह कहानी फोर्ट विलियम कॉलेज के लेखक निहाल चंद लाहौरी ने पहले ही फारसी से उर्दू में अनुदित कर दी थी। नसीम ने इसमें बहुत से अलंकारों का प्रयोग किया है और हार्दिक भावनाओं को भी बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया है। इस मसनवी से उदाहरण देना कठिन है क्योंकि मसनवी एक क्रमबद्ध कविता होती है जिसके भागों को अलग करके पढ़ने से अधिक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। उनकी गजलों से उदाहरण दिए जा सकते हैं। नाम मेरा सुनते ही शर्मा गए, तुमने तो खुद आपको रुसवा किया। गर यही है इस गुलिस्तां की हवा, शाखे गुल एक रोज झोंका खाएगी। रूहे रवानो जिस्म की सूरत मैं क्या कहूँ, झोंका हवा का था इधर आया उधर गया। अब दर्दे जिगर हो के निकलता है दहन से वो जोश जो बरसों मेरे सीने में निहां था। जब हो चुकी शराब तो मैं मस्त मर गया, शीशे के खाली होते ही पैमाना भर गया। उस समय अवध में बल्कि सारे देश में गजल ही लोकप्रिय थी। कसीदे बहुत कम लिखे जाते थे। हजवों निंदा का बाजार ठंडा पड़ चुका था। मसनवी भी बहुत नहीं लिखी जा रही थी, परंतु इसी युग में मर्सिये ने सबसे अधिक उन्नति की। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह था कि लखनऊ राज्य शिक्षा धर्म का अनुसरण करता था और इसलिए मुहर्रम और दूसरे त्योहार बड़े उत्साह से मनाता था। यहाँ के बड़े बड़े अमीर, पृष्ठ संख्या 89 जागीरदार, चाहे वह हिंदू हैं या मुसलमान, किसी न किसी रूप में उनमें अवश्य सम्मिलित होते थे। अवध की सभ्यता में आरंभ ही से यह विशेषता देख पड़ती है कि यहाँ कई त्योहारों में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलजुल कर भाग लेते थे। मुहर्रम में शोक सभाएं, मजलिसें सहस्त्रों की संख्या में होती थी और उनमें मर्सिये पढ़े जाते थे, इसलिए मर्सिये की बड़ी उन्नति हुई। इस संबंध में एक बात और कही जा सकती है कि वह यह कि लखनऊ की कविता में जो बनावट और एक प्रकार की गिरावट थी, उसकी प्रतिक्रिया आवश्यक रूप में हो रही थी, और मर्सिया ही कविता का एक ऐसा रूप था जिसमें जीवन के नैतिक और उत्कृष्ट मूल्यों का प्रचार किया जा सकता था। अतः इससे अधिक उचित समय मर्सिये की उन्नति के लिए नहीं मिल सकता था। कला के विकास के लिए एक वातावरण का होना जरूरी है, और वह वातावरण मर्सिये के लिए लखनऊ में मौजूद था। मर्सिया साधारणतः उस कविता को कहते हैं जिसमें किसी धार्मिक या राष्ट्रीय नेता या किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर शोक प्रकट किया गया हो और उसकी अच्छाइयों का उल्लेख इस प्रकार से किया जाए कि सुनने वाले भी प्रभावित हों। उर्दू में अधिकतर मर्सिये इमामा हुसैन और उनके साथियों के बारे में लिखे गए हैं, जो मुसलमानों के रसूल के नाती थे और जिनको नाम मात्र के एक मुसलमान बादशाह यजीद ने करबला की रणभूमि में 3 दिन का भूखा प्यासा बड़ी निर्दयता के साथ मार डाला। उनके साथ केवल 72 व्यक्ति थे, जिनमें 80 वर्ष के बूढ़े और 6 महीने के बच्चे भी सम्मिलित थे। वह सबके सब भूखे प्यासे ही मारे गए, और इमाम हुसैन ने अपने आदर्श के लिए एक बहुसंख्यक सेना से अंतिम समय तक बड़ी वीरता से लड़कर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनकी शहादत के बाद उनके खेमों डेरों में आग लगा दी गई और आदरणीय महिलाओं को बंदी बनाकर नगर नगर फिराया गया। मर्सिये में इसी घटना को बड़े रोचक और हृदय विदारक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। उर्दू में मर्सिये दक्षिण ही से मिलने लगते हैं, परंतु उनमें कोई साहित्यिक सुंदरता नहीं थी। वह केवल अपना शोक प्रकट करने और इमाम हुसैन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लिखे जाते थे। इसी प्रकार दिल्ली काव्य रचना के आरंभिक काल में जो मर्सिये लिखे गए, वह भी कोई साहित्यिक महत्व नहीं रखते थे, परंतु मिर्जा सौदा ने मर्सियों का एक पूरा संग्रह तैयार किया और इस बात को सजगता पूर्वक अपने सामने रखा कि मर्सिये में साहित्यिक सुंदरता का होना आवश्यक है। उसके बाद से लखनऊ में मर्सिया काव्य का एक महत्वपूर्ण रूप धारण कर गया, और बहुत से कवि धार्मिक पुण्य प्राप्त करने और कविता को नई सीमाओं तक ले जाने के लिए मर्सिये लिखने लगे। इनमें दिलगीर, फसीह, खलीक और जमीर बहुत प्रसिद्ध हैं। खलीक मीर हसन के पुत्र थे। उनके घर में 4 पीढ़ियों से मर्सिये लिखे जाते थे। उन्होंने भी बड़े श्रेष्ठ मर्सिये लिखे। मीर जमीर ने पृष्ठ संख्या 90 पहले पहल मर्सिये को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया और उसमें कुछ ऐसे अंश बढ़ाए जिनसे वह केवल एक शोकमय काव्य नहीं रह गया, बल्कि एक विशाल और व्यापक महाकाव्य बन गया, जिसमें क्रमिक ढंग से करबला की दुर्घटना का उल्लेख होने लगा। उन्होंने स्वयं इसका दावा किया है कि सबसे पहले उन्होंने मर्सिये को यह रूप दिया। मीर जमीर के मर्सियों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और उनके अध्ययन से प्रकट होता है कि वह पहले कवि थे जिन्होंने अपना सारा जीवन केवल मर्सिया लिखने ही में व्यतीत किया। आरंभ में उन्होंने गजल और मसनवियाँ भी लिखीं, किंतु मूलतः वह मर्सिया के ही कवि थे। मीर जमीर के बाद दो बहुत ही बड़े मर्सिया लिखने वाले कवि हुए, मीर बवर अली अनीस और मिर्जा सलामत अली दवीर। ये दोनों उर्दू मर्सिये के सूर्य और चंद्रमा कहे जाते हैं, और इन्होंने मर्सिये का एक ऐसा विशाल भवन तैयार कर दिया जिसमें फिर कोई वृद्धि ना हो सकी। मीर अनीस जो मीर खलीक के सुपुत्र थे, उनका जन्म फैजाबाद में 1804 ईस्वी के लगभग हुआ, परंतु जल्दी ही अपने बाप के साथ लखनऊ चले गए। खलीक स्वयं एक बड़े कवि और मर्सिया लिखने वाले थे, इसलिए अनीस को बहुत ही उचित वातावरण मिला। उन्होंने भी गजलों से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ किया, किंतु उनके पिता ने उन्हें गजलें कहने से रोक दिया, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि अनीस केवल मर्सिये लिखें। मीर अनीस ने उस समय की रीति के अनुसार फारसी अरबी पढ़ी थी और धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन भी किया था। इसके अतिरिक्त वह घोड़े की सवारी, व्यायाम, शस्त्र विद्या से भली भांति परिचित थे। उनका स्वभाव नर्म था, पर एक विशेष प्रकार की उदारता और आत्म अभिमान भी उनमें मिलता है। वे अपने सिद्धांतों को बहुत दृढ़ रखते थे और किसी के सामने सिर झुकाने को बहुत बुरा समझते थे। संतोष और नम्रता को प्रिय रखते थे, इसीलिए किसी बड़े से बड़े सज्जन का भय उनके हृदय में ना था। उन्होंने अपनी आयु का अधिकतर भाग लखनऊ में ही व्यतीत किया। उनका विचार था कि उनकी कविता का सबसे अधिक आदर लखनऊ के ही लोग कर सकते हैं, जिसकी नस-नस में काव्य रचना को परखने और सुंदरता से आनंद प्राप्त करने की भावना रची हुई है। लखनऊ के बाहर वह केवल इलाहाबाद, बनारस, पटना और हैदराबाद गए, जहां उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ। उन्होंने लखनऊ ही में 1874 ईस्वी में समाधि पाई। कहा जाता है कि बचपन में मीर अनीस ने एक आध गज़लें भी लिखी थी, किंतु उनकी महानता के चिन्ह उनके मर्सियों में ही मिलते हैं। थोड़े से सलाम और रुबाइयाँ भी मिलती हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह 5 भागों में प्रकाशित हो चुका है और कुछ भाग ऐसे भी हैं जो उनके परिवार के पास सुरक्षित हैं और अभी प्रकाशित नहीं हुआ। मीर अनीस के काव्य में वह सब विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक महान कलाकार के लिए आवश्यक हैं। मर्सियों में हर प्रकार के लोगों का चरित्र चित्रण होता है। पृष्ठ संख्या 91। उनमें अच्छे और बुरे, साथी और शत्रु, बूढ़े जवान, बालक, महिला और पुरुष, दोस्त और नातेदार सभी होते हैं। उनके एक दूसरे के संबंध कहीं बड़े जटिल हैं और कहीं सरल। उनके स्वभाव और व्यवहार में भिन्नता है, लेकिन मीर अनीस का कमाल यह है कि वह इनमें से प्रत्येक का उल्लेख उसी के स्वभाव के अनुसार करते हैं, जिसे देखकर ऐसा मानना पड़ता है कि वह मानव मनोविज्ञान के बड़े पंडित थे। उनके पास शब्दों का एक ऐसा बड़ा और अद्भुत भंडार था कि वह मिलती जुलती भावनाओं और जटिल हालातों का चित्रण बिल्कुल ठीक ठीक कर सकते थे। उनके लिए कठिनाई यह थी कि वह धार्मिक और ऐतिहासिक विषय पर कविताएं लिखते थे और उसमें अपनी ओर से घटाने बढ़ाने को वह पाप समझते थे। इसके अतिरिक्त उनकी दृष्टि में इमाम हुसैन और उनके साथी दैवी गुणों से परिपूर्ण थे, इसीलिए वह बहुत सोच समझ कर उनके संबंध में वह बातें कह सकते थे जिनकी चर्चा इतिहास के पन्नों में नहीं थी। मगर उनकी निरीक्षण शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह उन घटनाओं का विवरण भी कर सकते थे जो उस स्थिति में संभव थी। यही कवि की विचार शक्ति की परीक्षा होती है और मीर अनीस इसमें निपुण जान पड़ते हैं। उन्होंने प्रकृति का वर्णन भी बड़ी सुंदरता से किया है और भावनाओं के प्रकट करने में तो दुनिया के बहुत कम कवि उनके बराबर रखे जा सकते हैं। उनके मर्सीय नैतिक और उदार भावनाओं का एक बहुत बड़ा कोष है, जिसके अध्ययन से मनुष्य के भीतर आत्मगौरव के पवित्र भाव जाग उठते हैं। मर्सिया वास्तव में शोक प्रकट करने और सुनने वालों में करुणा भावना पैदा करने के लिए लिखा जाता है। मीर अनीस के मर्सिया इस दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। कैसा भी व्यक्ति उन्हें पढ़े प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अनीस को भाषा प्रयोग में बड़ी निपुणता प्राप्त थी। उस समय लखनऊ में अलंकारों का प्रयोग कभी कभी बड़े अनुचित ढंग से होता था, लेकिन मीर अनीस ने अपनी कविता को इससे बचाने की चेष्टा की। उनकी भाषा बहुत सरल, मीठी और शुद्ध थी। इसके अतिरिक्त वह उसे समय, स्थान और स्थिति के अनुकूल बनाने में कमाल रखते थे। उनके संबंध में यह कहा जाता है कि उन्होंने जिस दृश्य का चित्रण किया है वह आदर्शवादी होते हुए भी वास्तविकता के बहुत निकट रहता है। उनका विषय वस्तु जैसा गंभीर और उच्च था, उसके लिए उन्होंने वैसी ही शैली का प्रयोग भी किया। उदाहरण देना इसलिए आवश्यक नहीं होगा कि जब तक कोई उस पृष्ठभूमि से परिचित न हो जिसमें मर्सिये लिखे जाते हैं, उस समय तक दो चार छंदों से ना तो आनंद प्राप्त होता है और ना आलोचना में सहायता मिलेगी। मर्सिये के दूसरे कवि जो उतने ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, वह मिर्जा सलामत अली दवीर थे। उनकी जन्मभूमि दिल्ली थी। उनके पिता लखनऊ चले आए थे और दवीर का समस्त जीवन यहीं व्यतीत हुआ। मिर्जा दवीर ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और उस समय जिन विषयों को पढ़ना आवश्यक था उन सब में निपुण थे। वह पृष्ठ संख्या 92। बालपन ही से धर्म और कविता दोनों को प्रिय रखते थे, इसलिए उन्होंने काव्य रचना के लिए मर्सी को ही प्रसन्न किया और मीर जमीर के शिष्य हो गए। थोड़े ही समय में लखनऊ में और लखनऊ के बाहर उनका यश फैल गया। अवध के राज दरबार में भी उनका सम्मान होता था। जिस समय उनके सुयश का सूर्य उत्कर्ष पर पहुंच चुका था, मीर अनीस का नाम भी चमका और दोनों में मुकाबले होने लगे। मिर्जा दबीर भी लखनऊ के बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। उनका भी यही विचार था कि उनकी कविता से पूरा आनंद यहीं के लोग उठा सकते हैं। लेकिन 1857 ईस्वी के विप्लव के बाद मुर्शिदाबाद और पटना गए। सन 1875 ईस्वी में लखनऊ ही में मिर्जा दबीर का देहांत हुआ। मिर्जा दबीर के लिए कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 3,000 मर्सिये लिखे, जिसका अधिकतर भाग लखनऊ की कविता से प्रभावित है। उनके विचार बड़े उदार और शैली बड़ी जटिल थी। उसमें अलंकारों के बाहुल्य से और भी जटिलता पैदा हो जाती थी। इसमें संदेह नहीं कि मिर्जा दबीर बड़े विद्वान थे और करबला की शोकपूर्ण घटना को बड़े विस्तार से जानते और बयान कर सकते थे, परंतु उन्होंने कला के उन सूक्ष्म यंत्रों से अधिक काम नहीं लिया जिनका प्रयोग मीर अनीस ने किया था। अपने समय में तो उन्होंने लोगों को बहुत प्रभावित किया, परंतु जब बाद में अलंकारों का कौतुक समाप्त हुआ तो उनकी कविता बड़ी बनावटी जान पड़ने लगी। मर्सिये के लिए जो गंभीरता और भव्यता आवश्यक है, वह दबीर के यहाँ नहीं मिलती। जब कविता के सुनने वाले शब्दों के अर्थ और अलंकारों में निहित तो भेद खोजने में लग जाए तो उसका प्रभाव अवश्य ही कम होगा। यही बात मिर्जा दबीर की कविताओं में भी पाई जाती है। चूंकि अनीस और दबीर के विषय एक थे, समय एक था, काव्य रूप एक था, इसलिए हर आलोचक उनकी तुलना करने लगता है। लखनऊ में तो दो दल बन गए थे, जो अनीसीय और दबीरिये कहलाते थे, और इनमें आपस में खूब चोटें चला करती थीं। लेकिन आज तक आलोचक बिना किसी कठिनाई के यह निर्णय कर सकता है कि कविता और कलात्मकता की दृष्टि से दबीर अनीस की महानता को नहीं पहुंचते। भाषा शैली और वास्तविकता किसी दृष्टि से भी देखा जाए, अनीस संसार के महान कवियों में गिने जाएंगे। दबीर के यहाँ से भी उदाहरण देना बहुत कठिन है, क्योंकि उनकी अधिकतर कविताएं कठिन फारसी अरबी शब्दों और अलंकारों से भरी हुई हैं। मीर अनीस और मिर्जा दबीर की शैली का अंतर निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। अर्थ एक ही है, शैली दो। दबीर जेरे कदमे वालिदा फिरदौसे बरी हैं, अनीस सुनते हैं माँ के पाँव के नीचे विहिष्ट है। दबीर जिस तरह जल जले में कोई साहवे मकां, अनीस जैसे कोई भूचाल में घर छोड़ के भागे।